بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روش تحلیل سیاسی کی 41ویں گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ رہبر معظم کے خطبات سے کچھ اصولوں کو نکالا گیا ہے تاکہ انالائز کرنے کے لیے ایک تحلیل گر کو کن کن ٹولس کی اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم نے بیان کیا، ایجابی سلبی مقدمات، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد رہبر معظم نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات اور اس کے پیچھے محرکات کا جائزہ لیا، علل اسباب پہ روشنی ڈالی، خطرات سے آگاہ کیا اور انالائز کر کے بتایا کس طریقے سے، یعنی وہ تمام گفتگو جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں رہبر معظم عیناً اس کو آ کر ہمارے سامنے واضح کیا ہے. تیسرا جو اس کتاب کا حصہ ہے روش تحلیل سیاسی کا، وہ ہے اسلامی انقلاب کا جائزہ. یعنی آج کی جو گفتگو، اس میں ہم اسلامی انقلاب سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جس میں رہبر معظم نے اسلامی انقلاب کا جائزہ لیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان گزشتہ 30 سالوں میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ بھی واقعات رونما ہوں ان کو سامنے رکھا جائے. اسلامی انقلاب کا ہدف کیا تھا، اسلامی انقلاب کی رامی رکاوٹیں کیا تھیں، پھر اندرونی رکاوٹیں کیا ہیں، بیرونی رکاوٹیں کیا ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، انقلاب کیا چاہتا ہے، انقلاب کی کس چیز کا مخالف ہے، انقلاب کو کن کن رکاوٹوں کا اور مشکلات کا سامنا تھا، جو مختلف قسم کے نظریات تھے ان سے کس طرح اسلامی انقلاب جو ہے وہ درمیان سے نکل کر کامیاب ہوا، اس سارے گفتگو اس میں کی ہے. فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا انقلاب ہے تو اس کے علل اسباب پر روشنی ڈالنی چاہیے اور مسلسل انسان کو چیک اینڈ بیلنس یا محاسبے کا عمل انجام دینا چاہیے. اجتماعی کاموں میں ہم سب جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مد نظر یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہم بس کام پہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اور خطرات بھی ہوتے ہیں اور پھر مشکلات بھی ہوتی ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں، ان کو چیک نہیں کرتے. نہیں، ہمیشہ کوئی بھی کام کریں آپ تو اس کو چیک کریں کہ آپ نے کیا منصوبہ سازی کی تھی، کیا اقدامات اور فیصلے کیے تھے اور آپ کتنے کامیاب ہوئے، کامیاب ہوئے تو کیوں کامیاب ہوئے، ناکام ہوئے تو کیوں ہوئے، فیصلہ جات عمل کیوں نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں رہبر معظم نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں. فرماتے ہیں کہ انسان کو جزی نگر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی ایک چھوٹے سے پارٹ کو لے کے بیٹھ جائے. انہوں نے کہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جزی نگر نہ بنیں. نہیں، جزی نگری ہمیں کل نگری سے غافل نہ کر دے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ ہم جزیات میں اتنے پھنس جائیں کہ ہم کل سے غافل ہو جائیں. جیسے ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ پاکستانی سیاست میں ہم امریکہ نے ہمیں پھنسایا ان جتھوں میں، ان ٹولوں میں، ان دہشت گرد گروہوں میں کہ جو امریکہ کے اشاروں پر قتل و غارت کر رہے تھے. ہم مردہ آباد سپاہی صاحبہ، مردہ آباد لشکر، مردہ آباد طالبان تو کر رہے تھے لیکن ہم امریکہ کو بھول گئے تھے. یعنی ہم اتنے جزی نگر بنے کہ ہم اپنے اس اصل دشمن کو جو ان کی کٹ پتلی تھے ان کو ہم بھول گئے، ان کے پیچھے ڈور ہلانے والا کون تھا. تو جزی نگر ہونا چاہیے لیکن جزی نگر جو ہے وہ ہمیں کلی نگری سے یا پورے مجموعی طور پر اس کو دیکھنے سے غافل نہ کرے. رہبر کہتے ہیں کہ خود جامع منصوبہ بندی کرنا جزی نگری، یعنی جب آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آپ مختلف کاموں کو فیز میں تقسیم کرتے ہیں، یہ فرسٹ فیز، ٹو فیز، تھری فیز، فور فیز، اور سب میں پھر سب کے الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور الگ ان کے حالات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ جو ہیں وہ ان کو کمپائل کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک فیز ہوگی، اب دوسرا فیز باقی، دوسرا فیز ہوگی، تیسرا فیز باقی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو جامع منصوبہ بندی خود ایک جزی نگری ہے، لیکن یہ سب جو ہے وہ ہمیں غافل نہیں کرتی کہ مجموعی طور پر جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں. اسی چیز کو نظارت کہا جاتا ہے، مشرف ہونا کہا جاتا ہے کہ پورے مجموعے کو، پوری ایک سیریز کو جو ہے وہ ہم دیکھا جائے کہ ہم کہاں غلطی کریں، کہاں غلطی نہیں کریں، ہم نے جو اقدامات کیے، جو فیصلے کیے ہیں، آیا ہماری حرکت انہی کے مطابق ہے، اسی روش میں پر ہے، اسی جہت میں ہے یا نہیں ہے. لہذا رہبر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں جز کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کل کو بھی مد نظر رکھنا ہے. نہ جز کو دیکھنا کل کو کل سے غافل کرے، نہ کل کو دیکھنا جز سے غافل کرے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. اس بنا پر لازم و ضروری ہے ایک انسان کے لیے وہ جس تحریک کو شروع کر رہا ہے، جس اجتماعی کام کو شروع کر رہا ہے، وہاں پہ ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے. پھر فرماتے ہیں اسلامی انقلاب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کی جائے جس میں انسان اپنی سعادت کی تمام راہوں کو حاصل کر سکے، جس میں آزادی ہو. خوب، آزادی ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی آزادی ہو تاکہ وہ سوچ سکے، بول سکے، وہ عمل کر سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص کو آزادی ہے، ہر فرقے کو آزادی ہے، ہر دین اور مکتب کو آزادی، ہر نظری کو آزادی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر جو ہے وہ کام کرے. اسی چیز کو امام خمینی نے آ کر بیان کیا تھا کہ اسلام آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلام ٹیلی ویژن کے مخالف نہیں، اسلام چاہتا ہے ٹیلی ویژن اسلام کے سائے میں چلے، اسلام سینما کے مخالف نہیں، اسلام چاہتا ہے سینما اسلامی اصول پر کاربند ہو. یعنی وہ اسلامی اصول کہ جس کے ذریعے سے ہنر اور آرٹ کو انسان کی سعادت و فلاح کے لیے اور بہبود کے لیے काम में लगाया जाए। तो यहाँ पर आज़ादी ये मुराद है। तो ये कहते हैं कि इज्तिमाई आज़ादी होती है, ये भी एक आज़ादी है जहाँ पर इंसान को आज़ादी हो बोलने की, सोचने की। अब इसमें पूरी तफसील है कि आज़ादी से क्या मुराद है, आज़ादी की क्या बाउंड्रीज़ हैं और उसका हुदूद अरबा क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर अपने मुकाम पर डिस्कस होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर हम इसको रहबर की निगाह से आपके सामने बयान करेंगे। आज़ादी यह है कि इज्तिमाई आज़ादी होनी चाहिए, इस्तिक़लाल और ख़ुद मुख्तारी की आज़ादी होनी चाहिए, हमारे मुल्क पर बड़ी ताकतों का कब्ज़ा ना हो, हमारी पार्लियामेंट आज़ाद हो अपने फ़ैसले कर सके, कौम आज़ाद हो अपने फ़ैसले कर सके। आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं जिस तरीके से, जब आप गुफ्तगू ये सुन रहे होंगे तो ये ज़मान पार की तहरीक कि जो दर हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, 18 मार्च को जिस बर्बरियत का सामना करना पड़ा वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना वो रियासती दहशतगर्दी की जा रही है, मुनाफ़क़त खुल के सामने आ रही है, सियासतदानों के, मज़हबी लीडरों के दर हकीकत चेहरों पर जो मकरू नकाब थी वो उतर के सामने आ रही है। एक तरफ़ कहते थे ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, अब खुद कर रहे हैं। एक तरफ़ कहते थे कि डंडे लेके निकलो, पुलिस को मारो, तोड़ फोड़ करो, और आज जो है वो कह रहे हैं कि जनाब मिसाल के तौर पर, खूब जब आप सियासी हैं, जब आप सियासी और पॉलिटिशन होने का दावा करते हैं, सियासत में दावा करते हैं, दूसरों को मौका दीजिए कि वो आएँ। इतने खाइफ क्यों हैं? मैं किसी फ़र्द वायद का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये रविश कि जो इस वक्त अपनाई गई और रियासती जबर तशद्दुद की, ये जमहूरी तरीक़ों के ख़िलाफ़ है। यानी आप तमाम तर जमहूरी तरीक़ों को पामाल करते हुए दर हकीकत किस पाकिस्तान की तामीर करना चाहते हैं, पाकिस्तान कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यानी यूँ कहूँ कि यानी इस तरीके से आप रियासती जबर का दर हकीकत मुजाहरा कर रहे हैं, खूब ये आज़ादी नहीं। आज़ादी है कि हर शख्स बोलने का मौका दिया जाए, उसको गुफ्तगू मौका दिया जाए, उसके फॉलोवर्स हैं मिसाल के तौर पर तो उनको मौका दिया जाए, इतने खाइफ होने की क्या ज़रूरत है? खूब यानी हमारे फ़ैसले IMF करेगी, हमारे फ़ैसले बड़ी ताकतें करेंगी, हमारे फ़ैसले वो अफराद करेंगे कि जो किसी को नज़र नहीं आते, हमारे जो पार्लियामेंट है वो डमी है, इसका मतलब है। यानी इससे वाज़े तौर पे अंदाज़ा हो रहा है और कौम को समझ में आ रहा है कि यह सर क्या गेम हो रहा है, क्या सिलसिला हो रहा है। आज़ादी यह है कि हमारा मुल्क आज़ाद होना चाहिए, हम अपने फैसले ख़ुद करें, नहीं ये कि बाहर से आकर इम्पोर्टेड हुकूमत को थोपा जाए, वज़ीर ख़जाना को थोपा जाए, लोगों को थोपा जाए, और फिर जो है वो एक बदतरीन हुकूमत तारीख़ के पाकिस्तान की जो है वो लाके खड़ी कर दी जाए और उनके सामने एक अंबार लगा हो मसाइल का, और इख्तसाद की सूरत हाल हो, महंगाई की सूरत हाल हो, माह रमज़ान आ रहा है तो जनाब उसकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने। लिहाजा जब आप गुफ्तगू देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल के फेस से आप गुजर चुके होंगे, लेकिन तारीख़ में रह जाएगा कि पाकिस्तान में आज़ादी का किस तरह कत्लेआम किया गया, किस तरह शबखून मारा गया, किस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके वज़ारा ने और इनके सफारा ने जो है वो बर्बरियत और सफा की तो बहिमियत का मुजाहरा किया। मुमकिन है कि मुझे इख्तलाफ हो सकता है तहरीक इंसाफ से, मुझे इख्तलाफ हो सकता है दूसरी हमतों से, तो आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो रियासती जबर तशद्दुद की सियासत अपनाई जा रही है मैं उसका मुखालिफ हूँ। ये जमहूरी उसूलों के ख़िलाफ़ है कि आपने तमाम तर जो है वो उसूलों को पामाल कर दिया। लिहाजा ये इनकलाब जो है वो आज़ादी के साथ आए, इस्तकलाल आज़ादी जमहूरी इस्लामी, इस्तकलाल यानी ख़ुद मुख्तारी, आज़ादी यानी आज़ादी हो जमहूरी इस्लामी। तवज्जो रखिएगा, इतनी आज़ादी है कि हर शख्स जो है उसको बोलने का हक़ है, फिर भी ये जो है वो कहा जाए कि आज़ादी नहीं, दुश्मन का प्रोपेगेंडा, आज़ादी नहीं, आज़ादी नहीं है। हाँ, फिर आज़ादी की अपनी एक तशरीह है, इस्लाम ने किस चीज़ को आज़ादी कहा? हर चीज़ को आज़ादी नहीं कहा इस्लाम ने, बाद चीज़ों का आप यूरोप से लेते हैं, मगरब से लेते हैं, आप कहते हैं आज़ादी, ये आज़ादी नहीं है। उसके बाद कहते हैं इस्लाम की जामे तरीन शक्ल ये कि दुनिया और आखरत दोनों साथ तरक्की करें, न सिर्फ दुनिया न सिर्फ आखरत, जो सिर्फ दुनिया के पीछे आखरत नहीं है, जैसे यूरोप हमें ये कबूल नहीं है, या मिसाल के तौर पर आखरत और फिर दुनिया कबूल नहीं है, ज़ाउलहक का निज़ाम मुस्तफ़ा, तवज्जो कीजिएगा, उज़ाल जो निज़ाम मुस्तफ़ा ला रहा था, यह हमारी आमरियत, ये फ़ौजी आमरियत की जो बदतरीन शक्ल थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को उसने जिसने तालिबान और जो है मजहबी दहशतगर्दों के गोद में डाल दिया, वहाँ पर अख़वान जहाँ अफगानिस्तान के नाम पर जो है वो डॉलर कमाए गए और माल दौलत कमाई गई, जेबों को भरा गया, और फिर पाकिस्तान को क्या दहशतगर्दी दी कि 70-80 हज़ार अफराद जो हैं वो इन्हीं तालिबानों के हाथों कत्ल किए जाते हैं, वही अफराद जो जहाद अफगानिस्तान में गए थे। तो न सिर्फ दुनिया न सिर्फ आखरत, न तालिबान का और ज़ियाउल्लाह का निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लाम, और न यूरोप का वो तरक्की कि जिसमें दुनिया तो हो और आखरत ना हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों को चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। यानी बात लोग समझते चंद इस्लाम चंद रूहानी उमूर का नाम है बस, उसका इज्तमाहीत से और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, रहबर कहते हैं कि नहीं, इस्लाम यानी जामे तरीन शक्ल जिसमें दुनिया भी आखरत भी है, जिसमें दर हकीकत इंसान को जो है तरक्की के मौके मिले। आपकी खिदमत में सूरह आराफ आयत नंबर 96 में इरशाद हुआ, लौ अन अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ध, अगर ये गांव वाले इनको ईमान होता और तकवा अख्तियार करते, लफतहना, हम यकीनन और हतमन के उनके पर दरवाजे खोल देते, मिनस समाए वल अर्ध, ज़मीन आसमान के दरवाज़े खुल जाते, बरकातिम, लेकिन बरकतों के साथ खुलते, इन दरवाज़ा खुलता ज़मीन, नहीं ज़मीन भी सोना उगती, आसमान भी सोना बरसाता। यूँ कहूँ ये किन के लिए, ये उनके लिए जो जामे तरीन शक्ल है कि ईमान और तकवा। ईमान क्या है? अल्लाह पे ईमान। तकवा क्या है? सही राह में जद्दोजहद, यानी इनफरादी तौर पर हलाल और हराम की पाबंदी। और इज्तमाई तकवा क्या है? यानी सही राह में जद्दोजहद। खूब ईमान क्या है इनफरादी तौर पर? यानी दर हकीकत अल्लाह पे ईमान, उसकी रज़ाकियत खालियत पे ईमान, उसके वादों पे ईमान। और फिर इज्तमाही सतह पर यानी हम अपनी कौम और मुल्क की खिदमत के लिए खड़े हों तो हम ईमान भी लाएँ, सही जहत अमल भी करें, खुदा कहे कि हम दरवाज़े खोल देते हैं। आज आपने देखा इस्लामी इनकलाब के नतीजे में खुदा लफ़ताना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्ध, ज़मीन आसमान के दरवाज़े खोले। मुश्किलात हैं लेकिन अपनी मदद आपके तहत उन्होंने दरवाज़े खोले। बस इस बिना पर लाजिम ज़रूरी है कि वो मलाइका कि जो दर हकीकत खुदा के अर्श को उठाएँ, वो हमारे मददगार बनते हैं। जब आप खुदाइयत के साथ होते हैं तो खुदाइयत आपकी मददगार बनती है, फिर खुदा के फरिश्ते आपके मददगार बनते हैं, वो आपकी इस राह में जो है वो दर हकीकत मदद करते हैं। लिहाजा रहबर फरमाते हैं इस्लामी इनकलाब मुमकिन भी था और मतलूब भी था। मतलूब था कि इसको होना चाहिए, मुमकिन भी था कि हमने करके दिखाया है कि दुनिया की तमाम तर साजिशों के बावजूद, ताकतों के बावजूद, दर हकीकत इस्लामी इनकलाब जो है वो कामयाब हुआ। और आज उसके सामने, आज 40 साल से ज़्यादा और इस्लामी इनकलाब को 1979 से 2023 हो गई आज मार्च की, आज आप देखें कि किस तरीक़े से जो है वो इस्लामी इनकलाब जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मतलूब भी है, दुनिया को बताया कि देखो मतलूब है, ऐसा होना चाहिए, करके दिखाया। अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी बहुत सारे मैदान फतह करने हैं, अभी इस्लामी इनकलाब में आगे बढ़ना है, लेकिन उसने अपना रास्ता बता दिया, ट्रैक पे आ गया है कि ये ट्रैक है, ये रास्ता है, ये इसकी पटरी, इस पर हमने हरकत करना है। और मुमकिन भी है कि तमाम तर ताकतों, साजिशों, जालों, मंसूबों के बाद हम कामयाब थे और हैं और रहेंगे। और जब तक रहबर ने कहा हम इस आमनु व तकू के जो हमारा इज्तमाई तकवा, इज्तमाई ईमान है, अगर उस पर कारबंद रहेंगे हम, वहाँ पे जो हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और उस इज्तमाई तकवा और ईमान के लिए इनफरादी तकवा ईमान की ज़रूरी है। जो इनफरादी तौर पर तकवा ईमान रखते हैं वो फिर इज्तमाई सतह पर आकर मुल्क कौम की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही माना में ईमान और तकवा को हासिल करने और उसके तकाज़ों को पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।